हैं हाँ हाँ जी हाँ जी अभी नहीं बताती ये तो बात है, लेकिन कुछ ज्ञान के प्रश्न जो आते हैं बीच में सर्विस फील्ड में और अटकते रहते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, और उनको क्लियर करना चाहिए क्लास के बाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी
आत्मा जो है वो शरीर से बाहर निकल जाती है तो जरूरत हो जाती है।
हाँ जी हाँ
जैसे बाबा ने बहुत बार बताया तो जरूरत आत्मा जब प्रवेश करती है तो
नहीं, आत्मा वो जरूरत हो जाती है जिसमें सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता। सूक्ष्म शरीर जब रहता है तो उसे जड़वत नहीं कहेंगे, सूक्ष्म शरीर भी खलास हो जाए तब आत्मा जड़वत है।
लेकिन जो आत्मा परंधाम चली जाती है
हाँ वो जड़वत
है, वो जड़वत है।
हाँ
तो वो वापस कैसे आती है वो उनका प्रश्न है।
जैसे रिकॉर्ड में संस्कार वो भरा हुआ है गीत और समय की सुई लगती है तो चालू हो जाता है, ऐसे ही इस पांच तत्वों वाली सृष्टि में समय की सुई में जब आती है तो उसका पार्ट चालू हो जाता है।
वो समय के राउंड के हिसाब से सुई लगती है तभी उसका पार्ट चालू।
हाँ जी हाँ जी
वो प्रश्न बहुत।
कोई आत्मा द्वापर युग में पार्ट बजाना शुरू करती है, कोई त्रेता में, कोई सतयुग में, कोई कलयुग। हाँ जी हाँ प्रजापिता की आत्मा को नहीं, प्रजापिता की आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आती है, प्रवेश है। हाँ जी हाँ जी वो शिव जो है वो शिव अलग और प्रजापिता अलग आत्मा, जब शिव प्रवेश होता है नहीं तो नहीं हो सकती। ये बात बहुत शुरुआत में और बीच में भी चलती रही है एडवांस पार्टी में
बंगाल में,
कि शिव की आत्मा और प्रजापिता की आत्मा एक ही है। जैनी लोग सुप्रीम सोल को अलग से नहीं मानते, वो कहते हैं आत्मा ही पुरुषार्थ करके भगवान बन जाती है, वो सुप्रीम सोल को अलग से नहीं मानते। नहीं, आत्मा आत्मा ही रहेगी और सुप्रीम सोल ही रहेगा, वो 2500 साल तक साक्षी होकर के रहता है और आत्मा साक्षी होकर के हमेशा नहीं रह सकती। 2500 साल तक आत्म की स्थिति में है तो साक्षी है, उसके बाद द्वापर युग से वो पार्ट चलता है जो संघ के रंग में आने का पार्ट होता है।
बाबा
हाँ
गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है।
हाँ जी
बराबर, तो सारी दुनिया आज अंत में मानेगी शिव शंकर भोलेनाथ को।
हाँ
हाँ तो शूटिंग पीरियड में भी वो अंत में ही बात होने वाली है।
हाँ
इसीलिए उसका गायन अंत में हो जाएगा।
हाँ जी
बराबर
हाँ।
लेकिन अष्टदेव को सारी दुनिया माला के रूप में आज भी पूछती है,
हाँ।
हाँ। तो उनको शूटिंग पीरियड में कहाँ पर उनको मानती है?
शूटिंग पीरियड अभी 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 अष्टदेव प्रत्यक्ष कहाँ हुए
तो वो भी अंत में हो जाएंगे ना,
वो भी अंत में प्रत्यक्ष होते हैं, उनको भी मानेंगे, उनको भी मानेंगे। मुसलमान लोग कहेंगे ये अष्टदेव है, ये खुदा का तख्त उठाने वाले हैं।
सारी कल्पना कैसे मानते हो?
खुदा के तख्त भक्ति मार्ग के शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है,
जैसे कि कृष्ण का गायन
भक्ति मार्ग में नवरत्नों की वो नवग्रहों की पूजा नहीं होती
होती है बाबा, लेकिन वो आत्मा को तो मानते नहीं है। अभी शूटिंग पीरियड तो आत्मा को देखते नहीं है, अभी तो किसी को पता भी नहीं है
क्या
अष्टदेव को नहीं
क्या पता हो जाएगा?
शिव शंकर को तो आदि से ही मानते बाबा,
शिव शंकर को आदि से मानते हैं, लेकिन स्वरूप चाहिए ना उसका, प्रैक्टिकल रूप चाहिए ना, मानते हैं लेकिन ये तो नहीं जानते कौन है पार्टधारी। अभी तो ये भी पता चलेगा कि 8 के पार्टधारी कौन है,
सबसे ज्यादा मूर्ति भी शिव शंकर की है।
100 के पार्टधारी कौन है, वो माला में मणके कौन कौन है जो दूसरे धर्म में भी गाए जाते हैं, पता तो चलेगा ना।
बाबा एक वार्तालाप में हमने कहा है कि शिव शंकर भोलेनाथ जो गीता का भगवान है उनका गायन अंत में ही होता है, इसीलिए द्वापर कलयुग में शूटिंग
जब साबित करेंगे तभी तो गायन होगा।
द्वापर कलयुग में शंकर का एक कृष्ण का गायन चलता है
क्योंकि
शूटिंग पीरियड में लंबे समय तक वही चला है।
लंबे समय तक हमेशा नहीं चलता है। जब द्वापर युग का आदि था तो उस समय गीता जो है वो निराकारवादी रचना मानी जाती थी। बाद में उसमें 100, 200, 500 साल के बाद फिर कृष्ण का नाम डाला गया। ऐसा जो पाश्चात्य पश्चिमी सभ्यता के जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अपनी थीसिसों में लिख के रखा हुआ है, ग्रंथों में ये लिख करके रखा हुआ है कि पहले शास्त्रों में सच्चाई थी, बाद में फिर ये शास्त्र झूठे हो गए इंटरप्रिटेशन से।
पांडव गल मरे।
हाँ जी।
तो पहले द्रौपदी गल मरती है।
हाँ जी।
द्रौपदी गल मरी।
हाँ।
तो वो पहले स्वर्ग में जानी चाहिए।
कैसे?
धर्मराजा लास्ट में।
देवान माताओं में ज्यादा होता है या भाइयों में ज्यादा होता है?
माताओं में, क्योंकि वो गल मरी पहले ना।
हाँ।
पांडवों में जब गए तो धरा से गल मरी।
हाँ।
तो
पुरुषार्थ ज्यादा कौन करते हैं? भाई लोग ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं प्योरिटी का या माताएं ज्यादा प्योरिटी का पुरुषार्थ करती है?
माताएं
करती है। तो वो पहले गल मरेगी?
अब तो स्वर्ग में वही पहले जाएगी।
जाएगी नहीं, स्वर्ग में जीते जी जाने का सवाल है।
तो धर्मराज को बताया कि
वो जीते जी गए,
वो आखिर में गया।
वो धर्म का जो राजा है, धारणाओं को जो पूरा पूरा फॉलो करने वाला है, वही आत्माएं स्वर्ग में जाएंगी जीते जी।
द्रौपदी
कैसे जाएगी?
पहली
नहीं तो वो देहभान, वो देहभान जो है वो देहभान तो रह गया ना। जीते जी जो होनी चाहिए, जीते जी मरने वाली बात वो नहीं हो पाई।
इसलिए भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा है ना। इसलिए भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा है।
हाँ नहीं, सत्यनारायण की कथा की बात अलग है। पांडवों का गायन है गल मरे और द्रौपदी जो है वो तो थक गई।
तो पहला पांडव जो गल मरा,
हाँ?
तो पहला जाना चाहिए ना, नकुल कहते हैं।
हाँ?
इसका कोई स्कूल नहीं।
हाँ?
तो पहला हाँ? जाना चाहिए।
पहले कैसे जाएगा?
गल मरता है ना, पहले वो लोग गल मरते, बाद में धर्मराज आए।
तो वो भी द्रौपदी की तरह पहले कहीं धराशाही हो गए हो तो
अष्टदेव के बारे में आपने कहा ना, अष्टदेव के बारे में आपने कहा विदेश से प्रत्यक्ष हो जाएंगे।
हाँ।
तो विदेश मतलब बॉम्बे भी है ना।
हाँ, हाँ। तभी तो बोला है कि जो माला बनेगी उस माला में जो आठ होंगे, विजय माला में जो आठ होंगे वो बम्बई और दिल्ली
से
ज्यादा निकलेंगे। बम्बई है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी, दोनों ही चाहिए।
वर्तमान समय
दोनों ही कल्याणकारी है।
वर्तमान समय जो अहमदाबाद में जो ये है ना श्री स्वामीनारायण का मंदिर,
हाँ,
वहाँ बहुत व्यभिचार के फैला हो रहा है आजकल। और हाँ, और पंडे लोग भी करोड़ों रुपए लूट के भाग गए स्वामीनारायण मंदिर से।
तो अच्छी बात है ना, शूटिंग प्रैक्टिकल में हो रही होगी ना अभी,
करोड़ों रुपए के
ब्राह्मणों की दुनिया में भी प्रैक्टिकल शूटिंग हो रही होगी ना। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो विनाश कैसे होगा? ब्राह्मणों की दुनिया में भी विनाश कैसे होगा? इम्प्योरिटी से होता है विनाश, प्योरिटी से होती है स्थापना। देवियों की पूजा करने वाले, हाँ, अगर देवी अकेली देवी है और उसके साथ देवता नहीं है तो वो पूजा करने वाले असुर हैं। अगर लक्ष्मी के साथ नारायण भी है तो उनको लक्ष्मी की पूजा करने वाले को या महालक्ष्मी की पूजा करने वाले को असुर नहीं कहेंगे।
तो वही विदेशी हो गए क्या?
हाँ जी, विदेशी। हाँ,
और विदेशी एक ही
है। देवान की बात हो गई ना कि अकेली देवी को मानना है, अगर उसके साथ देवता दिखाई पड़ता है तो नहीं मानना है।
बाबा ने मुझे भी बोला है,
हाँ,
गॉड मदर को मानते हैं।
हाँ, गॉड फादर को विदेशी मानते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है ना बाद में, जब भगवान की प्रत्यक्षता होती है तो बाद में पता चल जाता है, डूबी जा कर देते हैं। असलियत का पता बाद में चलता है ना, छुपा रुस्तम बाद में बोले। अभी भी तो बेसिक नॉलेज में जो मान्यता हो रही है वो डूबी जा की हो रही है, किसके लिए हो रही है और किसके लिए नहीं हो रही, एडवांस पार्टी वाले जानते हैं, उन्होंने डूबी जा कर दिया। और दुनिया वाले डूबी जाए या उठ जाए और सर के ऊपर रखे बैठे। तो जिनको प्रत्यक्षता होती जाती है वो उस बात को समझते जाते हैं। अब विदेशी सच्चाई को पहले समझते हैं, सत्य को ही भगवान कहा जाता है। तो ये रुद्रमाला में सारे क्या है, विदेशी, बाप खुद ही विदेशी बनकर के आया हुआ है, तो सारा ग्रुप कैसा होगा, विदेशी होगा, मजबूत नहीं हो जाती। तो एडवांस पार्टी है ऊपर की छत और कच्ची छत है बेसिक पार्टी। जब ऊपर की पक्की हो जाएगी तो नीचे की छत निकाल दी जाएगी। इसलिए बोल दिया, इशारा दे दिया, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, ताला भी नहीं लगाने देंगे, और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी
पड़ेगी। देहक के दो बाप बोला है,
हाँ जी,
एक तो शिव बाप आत्माओं का बाप और दूसरा जो प्रजापिता मनुष्य आत्माओं का बाप, लेकिन जो मनुष्य आत्माओं का बाप होता है साकारी सृष्टि का बाप है, उसको हद कहेंगे या बेहद कहेंगे?
हद का बाप तो है ना, हद का है, इसलिए क्योंकि वो कीड़े मकोड़ों का बाप नहीं है।
लेकिन हद माना साकार
होगी, हद माना 500-700 करोड़, 800 करोड़ ज्यादा से ज्यादा 750 करोड़ हद हो गई ना। लेकिन कीड़े मकोड़ों की संख्या कोई जान पाएगा? कीड़े मकोड़े पशु पक्षी इनकी हद है कोई?
प्रजापिता को भी
कह दिया है 84 लाख, वो तो योनिया कहीं जाति बता दी लेकिन नंबर तो नहीं बताए। तो उन सब का बाप है सुप्रीम सोल प्रजापिता, फिर भी हद का है, मनुष्य सृष्टि है तो मनुष्य सृष्टि की हद है। जितनी भी आत्माएं हैं उनकी हद नहीं कही जा सकती, उनका कोई नंबर नहीं गिना जा सकता।
बाबा, कल दिल्ली में
विस्फोट हुए, चार बम फटे,
पीपल्स पार्टी में भी कुछ हुआ क्या?
नहीं नहीं, ओ उसमें नुकसान क्या क्या हुआ?
चालीस मर गए,
100 जख्मी हुए, 40 मरे,
सौ लोग मर गए, बाबा सौ एक सौ
रेड अलर्ट कर दिया है
पहाड़गंज में हुआ,
पहाड़गंज में
सरोजनी नगर।
अच्छा,
और एक का बाबा
दिल्ली में जो गंध का पहाड़ था वहाँ विस्फोट हुआ,
और सरोजनी नगर
में, सरोजनी नगर
में। बाबा आपने कहा कि मुरली में मुसलमान लोग भूखे मरेंगे, तो वर्तमान समय भूकंप हुआ पाकिस्तान में, तो अनाज के लोग भाग रहे थे उधर।
हाँ, तो पूर्ति अभी दुनिया के लोग नहीं कर पा रहे हैं ना, अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे चल के तो ये भूकंप इतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे कोई किसी को पूछेगा नहीं। अभी तो फिर भी हिंदुस्तान भी उनको सहायता कर रहा है, दूसरे देश भी सहायता कर रहे हैं, एक दूसरे को सहायक बन जाते हैं, आगे चल करके अभी यहाँ हो रहा है, कल दूसरी जगह होगा, परसों तीसरी जगह होगा, ऐसे होता ही चला जाएगा। एटम बमों के विस्फोट भी आज एक शहर पे हो रहा है, दो दिन के बाद दूसरे शहर पे हो जाएगा, तीसरे शहर पे हो जाएगा, एक एक शहर के ऊपर खलासा होता जाएगा। भारत में तो पहले ही मारकाट होकर के खेल खलास हो जाएगा, यहाँ हिंदुस्तान को कौन पूछेगा, जो पहले ही मरा हुआ है उसके ऊपर एटम बम उठा लेकर कौन मारेगा? दया आ जाएगी, अरे इनको छोड़ो ये तो पहले ही।
हाँ, सवाल ये था कि प्रजापिता को कैसे कहेंगे बेहद का बाप?
है बेहद का बाप कहाँ कह रहे हैं आप, कह रहे हैं बेहद का बाप?
बाबा आपने मुरली में कहा कि बेहद के बाप दो हैं,
बेहद के बाप दो हैं, वो मनुष्य शक्ति के बाप, मनुष्य शक्ति के हिसाब से बेहद के बाप दो है, वो मनुष्य आत्माओं का भी बाप है और मनुष्य शक्ति का भी बाप है, आत्माओं का भी बाप है लेकिन मनुष्यों का बाप है।
बाबा सदा
कायम
शिव बाबा रहते
हैं। शिव बाबा सदा कायम है,
5000 वर्ष तक उनका ड्यूरेशन।
बाबा
बाबा हो गया ना, उसकी शिव समान स्टेट बन गई।
हाँ हमेशा के लिए थोड़ी बन गई, हद के लिए बनी, हद का टाइम है उसमें, और एक जन्म कम होगा चौथाई वाला कम हो जाएगी।
और शिव बाप साक्षी हो जाते हैं, शिव बाप परमधाम चले जाते हैं,
परमधाम वासी हो जाते हैं,
परमधाम वासी उसी शरीर में तो रहते होंगे।
नहीं तो दोनों आत्माएं अलग अलग,
फिर उनको तो कारण शरीर है नहीं शिव बाप को, आमीन सर, सूक्ष्म शरीर नहीं है
उनको, दरकार ही नहीं,
अगर उनको सूक्ष्म शरीर नहीं है,
उनको दरकार ही नहीं सूक्ष्म शरीर की,
फिर वो प्रवेश कैसे करते, कैसे पता कि यही रथ में हमें प्रवेश
करना, जो है जाने जाना है उसे प्रवेश करने में कितनी देर लगेगी,
ज्ञान के आधार।
हाँ जी, जो जाने जाना हार है उसको तो देर ही नहीं लगेगी, जो जाने जाना हार नहीं है वो बोलता है कि मैं जाने जाना हार नहीं हूँ, तो बोलने वाला जो बोल रहा है वो आत्मा के लिए बोला गया, सुप्रीम सोल के लिए थोड़ा ही बोला गया, वो तो है ही जाने जाना हार।
इसमें दिखाते भक्ति मालूम, रावण जब खत्म हो जाता है तब लक्ष्मी आती है, उसमें कुछ दिन का अंतराल दिखा, जैसे 15 दिन है, तो क्या आधार मतलब दुनिया में जो रावण के नाम से प्रसिद्ध है वो खत्म होने के बाद फिर लक्ष्मी आएगी, या कुछ रिलेशन है इसका?
दुनिया का कचरा खत्म होगा तभी तो आएगी,
जैसे अभी ब्राह्मण की दुनिया में जो रावण के नाम से जाना जाते हैं,
तो रावण के नाम से कौन जाने जाते हैं,
जिसका आधार मूल तो दुनिया में है,
आधार मूल और बेसिक की दुनिया में रावण के रूप नहीं है, यहाँ भी तो है, जैसे बीज है वहाँ जड़ है, तो ये अंतर है, ये बीज ज्यादा पावरफुल होते हैं या जड़ें ज्यादा पावरफुल होती है, बीजों में ज्यादा ताकत है वो बड़े रावण
भी लागू होता है ना, आधार
होता है, यहाँ भी लागू होता है, यहाँ भी जब तक सफाया नहीं हुआ है, साथ सफाया हो जाए सब बचेंगे, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी।
बाबा हाँ, मुरली में बोला है कि माया बुद्धि से शरण करो, तो माया अंदर एक है, अंदर से एक है, बाहर से एक है ना,
हाँ,
जो पहले सरेंडर होगी,
हाँ,
मुरली बोला आते डर से पहले ही,
हाँ,
पहले माया बुद्धि सरेंडर होगी,
हाँ, हाँ,
तो इस तरह कैसे प्राप्त, मतलब अंदर एक बाहर होने के बावजूद भी आश्चर्य पहले कैसे,
जो पहले सरेंडर होगा मन बुद्धि से वो ज्यादा पावरफुल बनेगा, और जो बाद में सरेंडर होगा वो कम पावरफुल बनेगा, इसलिए बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान बनती है। अभी भी देखो सरेंडर होने वाले तो बहुत निकल रहे हैं लेकिन मन बुद्धि सरेंडर करते हैं क्या,
इसका मतलब बाबा 1983 में मम्मी सरेंडर हुई है,
ऐसे सरेंडर बहुत हो जाते हैं लेकिन मन बुद्धि से सरेंडर हो जाए, जैसे चलाए वैसे चले, ये बड़ी बात है ना।
बाबा बेल पर शंकर की सवारी हुई,
हाँ जी हाँ जी
बरोबर
है,
एक बार जो कृष्ण शंकर के सर पे अर्धचंद्र के रूप में दिखाई देता है, तो एक चंद्र, एक तो बेल पता चला, शिवलिंग के बाजू में दूसरा बेल भी रखा जाता है,
हाँ,
तो वो कौन,
शिवलिंग के बाजू में दूसरा बेल रखा जाता है, देखा किसी ने, कहाँ
दो शिवलिंग,
कहाँ कहाँ देखा,
हमारे यहाँ मंदिर में है,
हमारे यहाँ मंदिर में, तो सभी मंदिर में क्यों नहीं है, जब सभी मंदिरों में नहीं है तो किसी ने रख दिया होगा, जिसका मन में आया पैसा, नहीं पूछना क्या चाहते हैं,
एक तो बाहर होता है,
हाँ
वो तो ब्रह्मा का अपन बता दिया,
बाहर नहीं होता है
सामने होता है,
जो जनाधारी होती है उसमें शिवलिंग रखा होता है और जलाधारी की नाली के नीचे ही वो बैंड रखा जाता है,
बाहर
मंदिर बना हुआ है तो बाहर भी रख देते हैं,
और एक अंदर नाली के ऊपर बताया जाता है,
वो एक ही है,
वो एक ही है,
हाँ जी, अलग अलग नहीं है, समझ लिया है, दोनों भी दो अलग अलग नहीं रखे जाते।
नहीं नहीं, एक तो जब भी पानी निकल, पानी जब डालते हैं ना शिवलिंग के ऊपर और फिर गौमुख से वो पानी निकलता है बाहर रखते हैं गौमुख से, और फिर दूसरा है
गौमुख नहीं है वो बैलमुख है।
ओ बैल
है, दो बैल है ही नहीं, एक ही बैल है, है? नहीं नहीं, कोई यहाँ कोई मंदिर किसी ने देखा नहीं ऐसा जिसे दो बैल रखे हो, एक बैल होता है। इसीलिए तो एडवांस पार्टी में ऐसे निकले हुए हैं, कहते दो बैल होते हैं तो दो कृष्ण भी होते
हैं।
तीसरा कृष्ण तैयार तो नहीं हो रहा है
बाबा, वो आए थे वो रमाकांत भाई ने मोदी को कह दिया, मोदी को,
हाँ जी
रमाकांत भाई आए थे ना औरंगाबाद के,
हाँ
मोदी को बोल दे तुम्हारा कृष्ण का पाठ नहीं है,
हाँ
उनके पर नागा हुआ कृष्ण का पाठ मेरा है, इस तरह कृष्ण का पाठ, मैं बोला कृष्ण के पीछे क्यों पड़े हो आप,
हाँ
नर से नारायण बोलो,
तो आज भी तो मुरली बोल दिया कृष्ण कोई एक थोड़ा ही है।
तो बोला नर से नारायण बनने के लिए बाबा कह रहे इतने ऊंची पोस्ट दे रहे आपको, आप फिर कृष्ण बनने जा रहे हैं।
बाबा एक पॉइंट है कि नवग्रह जो है, नवग्रह के आगे पीछे, किसके आगे पीछे दो चंद्रमा, किसके आगे पीछे पांच चंद्रमा, किसके आगे पीछे बारह चंद्रमा रहते हैं, इसका क्या जवाब चाहिए?
चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है,
मगर वो उन नवग्रह में वो प्रवेश करते हैं क्या बार बार?
प्रवेश तो उनकी छाया तो प्रवेश करेगी ना, परछाया
बारह चंद्रमा जिस ग्रह
पूरी एक तरफ आएगा, बीच में चंद्रमा आएगा, तो चंद्रमा की परछाया पृथ्वी के ऊपर पड़ेगी ना,
वो तो है, मगर जो नौ ग्रह है
तो नौ ग्रहों के अलग अलग उपग्रह हैं, हर एक ग्रह के अपने अपने उपग्रह हैं, जो उपग्रह हैं वो उपग्रह को उस ग्रह के आसपास घूमना पड़ता है, चक्कर लगाता है।
बारह चंद्रमा,
हाँ जी
पांच चंद्रमा,
हाँ है, आप बंदर जैसे काम किए होंगे तो बंदर का मुंह दिखाया है, है? क्यों नारद का राज नहीं समझा, नारद का राज समझा नहीं, नारद का मुख बंदर जैसा दिखाया गया है,
नारायण का बच्चा था ना वो,
हाँ नारायण का बच्चा था लेकिन उसका मुख कैसा दिखाया गया, बंदर का, इसलिए दिखाया गया कि वो अपने को समझे कि हम बंदर कैसे हैं, अभी नारायणी को भरने काबिल नहीं बने हैं, और जो बंदर जैसा है तो वो मंदिर लायक तो जरूर नहीं बना है। हाँ ये बताया कि नारद जो है वो दूसरों को तो कहता फिरता है चलो बैकुंठ चलो बैकुंठ चलो बैकुंठ, लेकिन खुद कहाँ घूमता रहता है, है? खुद नरक की दुनिया में घूमता रहता है, माने बुद्धि कहाँ रहनी चाहिए, बुद्धि रहनी चाहिए उपराम, लेकिन उपराम अगर बुद्धि नहीं रहती और इसी दुनियादारी को देखती है बुद्धि, तो इसका मतलब बंदर है या मंदिर लायक है, है? ब्रह्मा का सोल क्यों है, कृष्ण की सोल जो है वो महारथी का पार्ट बजाने वाली है, वो गणेश का पार्ट है, क्या राम वाली आत्मा हो सकती है,
राम वाली आत्मा ही नारायण को तो बनती है,
और जो बंदर से मंदिर लायक बनते हैं ना, ये बड़ी बात क्या होगी, वो तो बनते ही, जो बंदर जैसे हैं वो मंदिर लायक नहीं बनते।
माया जो पहले संडर होती है,
है?
माया बुद्धि संडर पहले होती है,
हाँ जी,
तो उसकी प्राप्ति 84 जन्मों के हिसाब से होगी या उसको कम कटौती आती है उसके अष्टदेव के मुकाबले,
तो माया अष्टदेव में है क्या?
नहीं,
तो पहले प्राप्ति कैसे होती है?
पहले प्राप्ति इसी आधार पर होती है कि जो यज्ञ के आदि में अष्टदेव थे उन्होंने दीदी दादियों की श्रृंगार किया था गुण रत्नों से ज्ञान रत्नों से, लेकिन वो हार खा जाते हैं, जैसे राम वाली आत्मा फेल हो जाती है वैसे राम के फॉलोअर्स सारे फेल हो जाते हैं, और वो डटी रहती है, उसमें पावर ज्यादा है।
माउंट आबू में थे वो लोग, माउंट आबू में थे
तभी तो बोला इन दादियों की पालना वो क्या नाम श्रृंगार किया है, माया के 84 जन्म होंगे या नहीं होंगे। माया तुम किसको पकड़ते हो, बीज रूप आत्मा को पकड़ते हो या आधारभूत को पकड़ते हो है? माया सिर्फ आधारभूतों में ही है या बीज रूप में भी है? तो बीज रूप में हो गए, बीजों का कभी नाश होता है क्या? हाँ जी
बाबा, आश्रम माने क्या
है?
आश्रम माने क्या
आप? बात तो बढ़िया पूछी।
बाबा जो मिसाल देते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो ये बात कौन किसको कह रहा है क्या? ऐसा लगता है जो मिसाल दिया उसका क्या और कौन सा मिसाल की?
अब मोर तो अभी ज्ञान का डांस कर रहा है, लेकिन ये सारी दुनिया तो कांटों का जंगल है ना, तो जो जंगल के अंदर है वो देखेंगे और सारी दुनिया थोड़े देखती है। संगम भी कृष्ण के द्वारा जो ज्ञान डांस होता है वो सारी दुनिया देखती है क्या? सारी दुनिया नहीं देखती, जो देखते हैं वो उस लिस्ट में आ जाते हैं।
बाहुबली में बाबा कर्नाटक में बाहुबली का स्टैच्यू है बहुत बड़ा,
हाँ जी,
उसमें महा मस्तक अभिषेक होने वाला है,
हाँ जी,
उसमें करोड़ों रुपए का मतलब स्वयं प्राइम मिनिस्टर आके हेलीकॉप्टर से उसमें अभिषेक करने वाला
है।
संगम में भी किसी का?
हाँ तो संगम खोपड़ा फोड़ा जाए ना देवताओं को मंदिर में, हाँ जो रियल नहीं होगा तो उसको फोड़ा जाएगा ना, तब तो भेद भेद खोलेगा, देखो ये रियल पार्ट नहीं है, इसलिए तो मुरली में बोला शंकर का पार्ट रियल नहीं है, माना नारियल है, तो नारियल नारियल ही बना रहेगा तो रियलिटी प्रत्यक्ष कैसे होगी? सच्चाई सामने आनी चाहिए ना। है शंकर के मंदिर में भी, शिव के मंदिर में भी नारियल तोड़ा जाता है और देवी के मंदिर में भी नारियल तोड़ा जाता है। हाँ जी
शंकर के मंदिर में तोड़ते नहीं
है,
मंदिर में तोड़ते नहीं ना,
हाँ चढ़ाते हैं अर्पण करते हैं। और
सिंधी बांधी जाती है
आग, आग लगाई गई और कपड़े बांधे गए,
हाँ रावण राज्य का कुछ कनेक्शन
है, ये 16,000 कपड़े ही तो है और ये रावण राज्य ही तो है जो उसकी पूछड़ी में बांधा जाता है। एक कहावत बनाई है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। फिर दिखाते हैं जितने भी कपड़े थे रावण राज्य में वो सारे कपड़े उनकी पूंछ में बांध दिए गए, सुंदर सुंदर सारे कपड़े बांधे गए, लेकिन वो पुराने कपड़े थे क्या? अतीतात्माएं थी और फिर उनमें तेल डाल दिया गया क्या? उन कपड़ों में ज्ञान का तेल छिड़क दिया गया, तिलक और जो फिर आग लगाई गई, तो आग तो जलेगी ना, चारों तरफ दुनिया में आग फैलेगी, जब आग फैलती है तो फिर हनुमान जी जाकर के सागर में उसको ठंडा कर देते है। कहाँ की बात,
अभी कार्य चल रहा
है,
अभी वो कार्य चल रहा है,
चल रहा है तो चलेगा ही है, आग कोई दूसरी थोड़ी होती है, काम बिकार की आग बढ़ेगी ना, बड़ा पार्ट जिसको समझेगी दुनिया और उसको समझेंगे कि ये बड़ा पार्ट है तो खुद भी वैसा ही करने लग पड़ेंगे, बड़ों को देख करके छोटे भी वैसा ही करने लग पड़ते हैं। बाबा ने कहा शंकर को फॉलो नहीं करना है, बाबा कहते रहे करने वाले करते रहेंगे।
बाबा ये कैसा हो जाता है, सूरज सूरज खुद जलता है औरों को रोशनी देता है, खुद जलता
है, यहाँ भी एडवांस पार्टी की आत्मा है अंदर अंदर जल रही है,
सूर्य
ये हमारी कोई बात ही नहीं सुनता,
सूर्य का पार्टनर कैसा
हो, तो सारी सूर्यवंशी है ना, अंदर अंदर जलते रहो और ज्ञान की रोशनी देते रहो, मनन चिंतन मंथन करते रहो।
बाबा
मंगल ग्रह है ना वो पृथ्वी को नजदीक आ रहे
हैं। अच्छा तो मंगल है मंगल कला
एडवांस पाते में एक महीने के अंदर आया। अब मैं फरुखाबाद आना चाहता हूँ। फरुखाबाद आना चाहता
हूँ। जी आइए। अभी मुरलिया में वो वाक्य आने बंद हो गए जिनमें आता था फरुखाबाद के मालिक को। फरुखाबाद के मालिक को बहुत मानते हैं। फरुखाबाद के मालिक है कि बात जो मुरलियों में आई है वो अभी आना बंद हो गई। अब आप समझ सकते हैं क्यों आना बंद हो गई। पुरानी जो कापियां हैं मुरली की वो अभी भी रखी हुई है माउंट आबू की छपाई हुई। तो ऐसे ऐसे वाक्यों वाली माँ वो मुरलियां क्यों नहीं छपाई जाती? क्योंकि जो विदेशी आत्मा यज्ञ में घुसी हुई है दूसरे दूसरे धर्म की कन्वर्ट हुई आत्माएं फिर से आ गई है वो सनातन धर्म की स्थापना नहीं होने देना चाहती। वो बिगड़ डालती है। जैसे हिस्ट्री में मुसलमानों ने हमारे शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके भाड़ में झोंक दिया, जमीन खोद करके जमीन में गाड़ दिया, नदी में बहा दिया फाड़ फाड़ करके। वो असली चीज को गुप्त कर देते हैं और अपनी झूठी बातों को प्रत्यक्ष करते हैं। मुसलमानों ने और क्रिश्चियंस ने भारतीय शास्त्रों की भारतीय फिलॉसफी की बहुत ग्लानी की। हिस्ट्री में ये बात प्रसिद्ध है। और भारतवासी ज्ञान की ही बात करते हैं तो इन सब बातों की शूटिंग कहां होती है? ब्राह्मणों की संघ की दुनिया में ही शूटिंग हो रही है। जो श्रेष्ठ है सूर्यवंशी आत्माएं हैं जो मुट्ठी भर तादाद में है ब्राह्मणों की दुनिया में वो गायन करती है भगवान का और भगवान के ज्ञान का। बाकी जितने भी हैं वो सब ग्लानी करते हैं। भगवान की ग्लानी करते हैं और भगवान के बच्चों की भी ग्लानी करते हैं। इसलिए मुरली में बोला है कलंकी इधर पिछाड़ी कुत्ते भौंकते रहते हैं। जो होशियार है वो समझ जाते हैं कि बाबा ने तो मुरली में मना किया हुआ है बुरा मत बोलो बुरा मत सुनो बुरा मत देखो। तो ये बुराई करने वाली बातें कहां से आ गई? मुरली सुनाते सुनाते बुराई करना कहां से सीख लिया? मुरली में तो अच्छी बातें आई है बुराई की बातें थोड़ी आई है। भगवान जो सुनाता है वो सब अच्छा ही अच्छा सुनाता है और विधर्मी विदेशी जो कुछ सुनाते हैं उसके सुनाने का प्रभाव ये हुआ कि दुनिया नीचे गिरती चली गई। एक बाप आकर के जो सुनाते हैं उससे दुनिया नीचे से ऊपर उठ जाती है सतयुग बन जाती है। 16 कला संपूर्ण मनुष्य मात्र है गिराने वाले और एक बाप है उठाने वाला। एक से होती है सदगति और अनेकों से होती है दुर्गति। वो आकर के रास्ता बताता है कि अभी जो शादी बर्बादी से जो सृष्टि पैदा हो रही है वो सृष्टि अभी बंद करना है अभी वो जो मैं दिव्य सृष्टि रच रहा हूं उस दिव्य सृष्टि में जन्म लेना है, और वो सृष्टि है मुखवंशावली। मुखवंशावली सृष्टि और कुखवंशावली सृष्टि शास्त्रों में गाई हुई, उस कुखवंशावली उन्हें कहा जाता है जो कोख को याद करते हैं। कुख माना गोद, जिन्हें ब्रह्मा की गोद याद आती है, सरस्वती की गोद याद आती है, और अभी दीदी दादी दादाओं की गोद याद आती है। तो वो हो गई कुखवंशावली, और जिन्हें परमात्मा शिव के ब्रह्मा मुख से निकले हुए वर्षण से याद आते हैं, ज्ञान रतन याद आते हैं मुख से निकले हुए, वो है मुखवंशावली। जो मुखवंशावली होंगे वो ज्ञान रतनों से खेलेंगे, वो दीदी दादी दादाओं से संतुष्ट नहीं होंगे। किससे संतुष्ट होंगे? ज्ञान की बातों से संतुष्ट होंगे। इसलिए बोला है ये ज्ञान सिर्फ गीता पाठ ही ब्राह्मणों को सुनाओ वो अच्छा समझेंगे। हमारी गीता कौन सी है? हमारी गीता है मुरली। जिनको मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, और मुरली से प्यार नहीं और दीदी दादी दादाओं से प्यार है तो समझ लो ये सब आसुरी है। ये द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के चले जाएंगे और भारतवासियों को धोखा दे देंगे। भारतवासियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती गई और दूसरे धर्मों की संख्या जनसंख्या बढ़ती चली गई। आज ये हाल है कि विदेशी हावी हो गए हैं सारी दुनिया के ऊपर। अभी तो बहुत भारी रिवोल्यूशन होने वाला है ज्ञान की बातों को लेकर। उस रिवोल्यूशन में जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो एक ज्ञान सूर्य को फॉलो करेंगे, उसी को पहचानेंगे और पहचान करके अपने जीवन में आचरण करेंगे, और किसी की बात मानने वाली नहीं है। इस स्थूल दुनिया में भी देखो, सूर्य जब दिन में निकलता है तो सितारे सब मर्ज हो जाते हैं, और चंद्रमा जब रात में निकलता है तो सारे सितारे प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जितना जितना चंद्रमा छोटा होता जाएगा सितारे बड़ा रूप धारण करते जाएंगे। यहां ब्राह्मणों की दुनिया में चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा। तो सितारों की जगमहाराज जो है वो सारे संसार में अभी दीदी दादी दादाओं के रूप में हो रही है। बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम होते हैं वो सितारे स्वतः ही अपने को अपने आप प्रत्यक्ष करते हैं, लेकिन जब सूर्य प्रत्यक्ष होगा तो इन सितारों की रोशनी कोई काम की नहीं रहेगी, एक ही एक दिखाई देगा। ये हमारी भारतीय परंपरा है। क्या? कि परिवार में जब तक बाप मौजूद होता है तो बच्चा अपने को आगे नहीं करता। और विदेशों में क्या परंपरा है? विदेशी राजाएं जो हुए हैं भारत में उनकी क्या परंपराएं रही? औरंगजेब गद्दी पर बैठा, अपने बाप को उठा करके जेल में डाल दिया। क्रिश्चियंस में भी ये परंपरा पनपी है, बाप मरे तो राजा ही हमको मिले। अभी जैसे मां बाप उनकी कोई हस्ती नहीं रही हिंदुस्तान में, विदेशी शिक्षा ने इतना असर कर दिया है कि अपनी पुरानी परंपराओं को भूल गए। अभी सिर्फ कागजों में लिखा जाता है वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा है। अभी पारिवारिक व्यवस्था हिंदुस्तान में टूट गई है। अभी बाप फिर आए हैं उस पारिवारिक व्यवस्था को बनाने के लिए। तरीका वही है, वहां लौकिकता है उस दुनिया में और यहां अलौकिकता है। उस दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं तो पुराना शरीर छोड़ते हैं, उस दुनिया से मरते हैं, नए बाप के घर में जन्म लेते हैं। जन्म लेने से पहले 9 महीने पेट में पकना पड़ता है, दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है। वो हद की पैदाइश की बात है और यहां बेहद की पैदाइश की बात है। जो मुरलियों में बोला है कि 7 दिन की भट्टी करना बहुत जरूरी है, 1 दिन आना और 1 दिन जाना और 7 दिन भट्टी में बैठना, उसमें बाहर की दुनिया से कनेक्ट। तो बेसिक दुनिया से मरते हैं और एडवांस की दुनिया में जन्म ले लेते हैं। मुरली में बोला था तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर होगा, जब क्लास ट्रांसफर होता है तो टीचर्स भी बदल जाते हैं, स्थान भी बदल जाता है। यहां भी क्या होता है, बेसिक नॉलेज में से जब एडवांस में आते हैं तो टीचर्स भी बदल जाते हैं और स्थान भी बदल जाते हैं। पढ़ाई वही है जो मुरलियां ब्रह्मा के मुख से निकाली हुई पहले सुनाई जाती थी, वो एडवांस में भी वही मुरलियां सुनाई जाती, लेकिन अंतर पड़ जाता है भारी। बेसिक नॉलेज में सूरदास कबीरदास तुलसीदास के दोहे कवित्त चौपाइयां सुनाई जाती हैं, रटाई जाती है, बच्चे याद करते हैं लेकिन उनके गोयार्थ को नहीं जानते। और वही चौपाइयां वही सूरदास के पद फिर बीए एमए में पढ़ाए जाते हैं और उनके अर्थ गुह्यार्थ हो जाते हैं, जिसके लिए मुरली में बोलते हैं मैं गुह्य के गुह्य राज समझाता हूं। तो दुनिया के मुकाबले बेसिक नॉलेज में जो ज्ञान सुनाया वो गुह्य ज्ञान था और उस गुह्य की भी गुह्यता एडवांस ज्ञान में सुनाई जाती है। सुनाने वाला एक ही है, वो बाप के रूप में बच्चों को ज्ञान का बीज रोपण डाल करके जन्म भी देता है, वो ब्रह्मा के रूप में पालना भी देता है और वो टीचर बनकर के एक एक मुरली के महावाक्य के हिज्जे हिज्जे कर करके भी समझाता है। ये मुरली के महावाक्यों को हिज्जे हिज्जे करके समझाना, गहराई से बताना और किसी मनुष्य मात्र का काम, किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी का काम नहीं है। तो वो टीचर भी बनता है, सुप्रीम टीचर है। जैसी सुपरमेसी वाली पढ़ाई वो पढ़ाता है, ऐसी पढ़ाई और कोई दूसरा मनुष्य नहीं पढ़ा सकता। वो सुप्रीम टीचर भी बनकर के आता है और फिर सदगुरु भी है, लास्ट रूप है। सत माने सच्चा, गुरु माने गुरु, एक है सदगुरु और बाकी सब है गुरु। सिख लोग भी कहते हैं एक सदगुरु निरंकार ओंकार अकाल गुरु, उसको काल नहीं खा सकता, वो मूर्त रूप है माने साकार है। सदगुरु बना दलाल तो दलाल साकार होगा या निराकार होगा, साकार। तो जो साकार सदगुरु रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है वो सत्य रूप होता है, माँ बाप का रूप प्यार भरा होता है, बच्चे गलती करेंगे तो माफ कर देंगे, लेकिन सदगुरु का रूप माफ करने वाला रूप नहीं है। उसके लिए बोला गया है गुरु का बुलावा काल का बुलावा। गुरु ने बुलाया और कोई नहीं पहुंचा तो समझो मर गया। माँ बाप बुलाते हैं, बच्चे हठी होते हैं, लटखट करते हैं, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, चल जाता है। लेकिन गुरु का जो सदगुरु का रूप अभी सामने आने वाला है, वो ये नाज नखरे देखने वाला रूप नहीं है। इसलिए अभी लास्ट चांस चल रहा है, टू लेट का बोर्ड लगने वाला है। विष्णु के रूप की प्रत्यक्षता हुई और त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता हो जाएगी। इसलिए जो भी आत्माएं अभी निकलती हैं भट्टी करने के लिए, उनकी भट्टी हो जानी चाहिए, ऐसे कि ये भट्टी चलती रहेगी, माउंट आबू तक भी चलती रहेगी। क्योंकि 4.5 लाख आत्माओं को भट्टी करनी है और उनमें प्रवेश होकर के ब्रह्मा सरस्वती जैसी 4.5 लाख आत्माएं जो बच्चे के रूप में सतयुग में जन्म लेने वाली है, वो भी उनमें प्रवेश करके भट्टी करेगी, तब 9 लाख की जनसंख्या पूरी होगी। 9 लाख आत्माओं को ज्ञान योग की भट्टी पूरी करनी है। जो पहले जन्म की प्रजा होगी, उस प्रजा की भी कोई विशेषता है, जो और जन्मों की प्रजा में वो विशेषता नहीं होगी। 84 जन्मों की कथा कहानी जानने वाले ये 9 लाख आत्मे होंगे। सतयुग में जो कम जन्म लेने वाली आत्मा ऊपर से नीचे उतरेगी, वो 84 जन्मों के रहस्य को नहीं जानेंगे, उनके कम जन्म होंगे, कम कलाएं होंगी, वो द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गया हो जाएंगे, वो कच्ची आत्माएं। अभी विष्णु की प्रत्यक्षता होती है, वैष्णो देवी की प्रत्यक्षता हुई और उस तरफ से सारी की सारी जो भी देव आत्माएं वो इधर आ जाती। सूर्यवंशी तो पहले ही आ चुके, आ रहे हैं, जो थोड़े बहुत रहे बचे हैं वो भी आ जाएंगे, चंद्रवंशी भी आ जाएंगे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी इन दोनों से मिलकर के देवता धर्म बनता है और बाकी जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो वहां पड़ी रहेंगी, मुकाबला करेंगी, विरोध पैदा करेंगी, दुनियावी धर्मगुरुओं के साथ मिलकर के विरोध करेंगे। दुनियावी जो राज्याधीश हैं, सत्ताधारी हैं, उनके साथ मिलकर के विरोध करेंगे। बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन पांडवों के साथ भगवान होता है। पांडव मुट्ठी भर होते हैं 5 और कौरव यादवों की संख्या 500-700 करोड़, फिर भी विजय किसकी होनी है? पांडवों की विजय होनी है। तो जरूर ऐसा संगठन का किला मजबूत बनेगा। कहते ना, अपने घर में अगर संगठन सच्चा हो, अपने घर में अगर मजबूती हो, तो बाहर का दुश्मन हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बिगाड़ तब होता है जब घर का भेदी लंका ढाता है। तो भट्टी करना जैसे बाप का बच्चा बना, बच्चा जब तक जाकर के बाप के घर में जन्म न ले तब तक बच्चा नहीं कहा जाता। जन्म लिया और बच्चा बन गया। जन्म लेता है तो बाप के घर में पहुंचना पड़ता है, हैं? तो जो जो आत्मा अभी यहां बैठी हुई हो, जिन्होंने भट्टी न की हुई हो, वो जल्दी से जल्दी पहले जाके भट्टी पूरी करें। और भी यहां क्लास में होंगे जिन्होंने भट्टी नहीं की है, क्योंकि अनंतपुर में तो जो पुरानी पुरानी आत्मा है वो तो सब ज्यादातर बाहर चली गई। हाँ जी, हाँ जी, और जो भी आए हैं वो सब ज्यादातर बाहर से आए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई कदरी से आए हैं, कोई नंदियाल से आए हैं, कोई मुड़कालपुर से आए हैं। और कोई पूछने करने की बात नहीं, भाषा नहीं जानते हैं।
बाबा ये माता जी पूछ रहा है,
हाँ।
वो द्वादश लिंग होता है ना,
हाँ जी,
बारह स्थल में बारह लिंग होता है ना,
हाँ जी,
उसका महिमा क्या है पूछ रहा
है। वो महिमा जो
बारह आत्माएं जो सूर्यवंशी निकलती है, वो सूर्यवंशी बारह आत्माएं जिनमें एक शिव बाबा माने शंकर का रूप और ग्यारह रुद्रगण, वो बारह मिलकर के बारह द्वादश लिंग कहे जाते हैं। हाँ जी, जो निराकारी स्टेज में स्थिर होते हैं, निराकारी स्टेज माना उनको अपनी इंद्रियों का जैसे भान ही नहीं, जैसे बाबा कहते हैं सुनते हुए न सुनो, कोई ग्लानी सुनाता है एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, जैसे कान है ही नहीं, देखते हुए न देखो, कोई बुरा कर्म कर रहा है जानबूझ करके हमको चिढ़ाने के लिए, हमारा दिल दुखाने के लिए, तो आंखें हमारी खुली रहे लेकिन खुले हुए होते हुए भी जैसे देखते हुए हम नहीं देखते, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किसी बच्चे के अवगुण को नहीं देखा, ऐसे नहीं कि दुष्कर्म करने वाले बच्चे बाबा की नजरों के सामने नहीं होते थे, होते थे लेकिन बाबा कभी उनके दुष्कर्म को देखते नहीं थे। तो ऐसे ही हमें भी ये स्वरूप धारण करना है कि देखते हुए न देखना, जैसे कुत्ता सूंघा सांगी करता है, कहां कहां कैसी कैसी बदबू आ रही है वो सूंघ लेता है, तो संसार की जो उड़ने वाली बदबू है वो हम न सूंघे, दूसरों की बदबू हम क्यों सूंघे, हम तो खुशबू छोड़ने वाले बच्चे हैं, ज्ञान रत्नों की खुशबू छोड़ते रहे, दिव्य गुणों की खुशबू छोड़ते रहे, हम बदबू की सुंघासांगी क्यों करें कि ये क्या करता है, वो क्या करती है, ये ऐसा क्या करता है, ये ब्राह्मण बना हुआ है, ये कैसा ब्राह्मण है, तो ये बातों की सुंघासांगी करना माने कुत्तपना, ये इस्लाम धर्म में जाने वाली आत्माओं का काम है, दूसरों की सुंघा सांगी करेंगी फिर दूसरों को सुनाएंगी, ये ऐसे करता था ग्लानी करना। ऐसे जो ग्लानी करने वाले होते हैं उनका हिंदुस्तान में हिस्ट्री में नाम क्या पड़ा है, मुगले, मुगल, मुगल संतनत हुई है ना, मुगलों का राज्य हुआ है ना, हाँ जी, उनका मुंह गला हुआ था क्योंकि ग्लानी उन्होंने की हिंदू धर्म की, तो वो कार्य हमें नहीं करना। तो ऐसे ही सभी इंद्रियों में जो भी इंद्रियां हैं उन सभी इंद्रियों में हमारी ऐसी विशेषता समा जाए, सभी इंद्रियां ऐसी निराकारी स्टेज वाली हो जाए, जैसे इंद्रियों से कर्म करते हुए हम कर्म कर ही नहीं रहे, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो और चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो, इंद्रियों से कर्म करने के लिए मना नहीं किया लेकिन मन को पूरा कंट्रोल करके कर्म करना है, पहला कर्म करते हुए मन बुद्धि एक बाप की याद में लगी रहेगी। जब ऐसा कर्म करेंगे और उस कर्म में जो श्रेष्ठ पास होने वाली आत्माएं होंगी वो बाहर है आत्माएं निकलेंगी। इसलिए उनका गायन है द्वादश लिंग ज्योतिर्लिंग। किसके लिंग? ज्ञान की ज्योति से भरे पूरे लिंग उस शिवलिंग कहे जाते हैं।
हाँ, वो जिस स्थान पर दिखाए हैं यात्रा के रूप में वो बारह लोग वहाँ से आए क्या?
नहीं नहीं, वो तो ऐसे दिखा दिया। अब वाराणसी है, बनारस
काशी,
बनारस है, काशी कही जाती है। तो क्या ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान का बना बनाया रस काशी में मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? जहाँ से मिल रहा है वही बनारस है। जहाँ ज्ञान का बना बनाया रस सारा मिल रहा है वही हमारा बनारस है। वहां जाकर के अनुभव करो कि दुनिया के मुकाबले वहाँ काश्य माना वो याद का तेज वहाँ है अथवा नहीं है, तो अनुभव करने से पता चल जाता है। क्योंकि जहाँ लंबे समय तक तपस्या होती है उस तपस्या का प्रभाव रहता है। भले बाबा वहाँ सन 98 के बाद नहीं है, 98 के बाद अभी 2005 चल रहा है ना, तो 8 साल हो गए बाबा का वहां पहुंचना नहीं हुआ, तो भी वहां तपस्या का इतना प्रभाव है कि जो भी नई नई आत्माएं वहां पहुंच रही है वो बहुत अच्छा अनुभव करके आती है। हाँ, कोई विधर्मी आत्माएं पहुंच जाए तो दूसरी बात, तो पता लग जाएगा वहां पहुंचने पर उनको अच्छा नहीं लगेगा, मेंटल टेंशन बढ़ जाएगा, वहां से भाग खड़े होना चाहेंगे। जो देवता धर्म की पक्की आत्माएं होंगी उनको बहुत अच्छा लगेगा।
चंद्रमौलीश्वर
जी,
चंद्रमौलीश्वर
क्या कह रहे हो?
चंद्रमौली कहते हैं।
चंद्रमौली, मौली माने मस्तक और चंद्र माने चंद्रमा, जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है कहते हैं चंद्रमौली माने शंकर जी। चंद्रमा मस्तक पर विराजमान है माना प्रवेश है। जैसे तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहा जाता है, शिव नेत्र खड़ा हुआ नेत्र दिखाते हैं, तो वो शिव है, वो प्रवेश है, इसलिए उसको कहते हैं शिव नेत्र। शिव के प्रवेशता की निशानी है शिव नेत्र। ऐसे ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की प्रवेशता की निशानी है चंद्रमा। ये दो विशेष आत्माएं हैं, वो राम वाली सोल में प्रवेश करती है, इसलिए तीनों आत्माओं का इकट्ठा पार्ट एक स्वरूप के द्वारा चलता है और उसका नाम दिया है शंकर। क्या? मिक्स, शंकर माना मिक्स पार्ट। कोई समझ नहीं सकता जल्दी कि कौन बोल रहा है, कौन दृष्टि दे रहा है, कौन वाइब्रेशन छोड़ रहा है, कौन कर्म कर रहा है।
नटराज रहेंगे बाबा,
नटराज वो तो ज्ञान डांस की
आदि
स्कूल डांस की बात नहीं है,
चिरंजीवी के रूप में दिखाया है। ऐसे क्यों
चिरंजीवी है? दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे
हैं?
चिरंजीवी है तो दिखाई पड़ना चाहिए ना, वो यहाँ संगम युग की यादगार है। चिरंजीवी का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ ज्ञान में आज से लेकर के अंत तक निश्चय बुद्धि रहता है वो जैसे जिंदा है, और जो अनिश्चय बुद्धि हो जाता है वो जैसे मर गया। हाँ, चिरंजीवी नहीं है, चिरंजीवी माने आज से लेकर अंत तक जिंदा रहने वाला। तो 5000 वर्ष की शूटिंग का जो पीरियड अभी चल रहा है ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में, इस समय जो ज्ञान में आज से लेकर अंत तक जिंदा है माने उसको अनिश्चय कभी पैदा नहीं होता, उसकी यादगार जो है वो शंकर जी के रूप में, अंजनेयालु के रूप में हनुमान के रूप में गाइए।
सीता उठा आम एपड़ गड्डीपुला दीकोनी चूपस्ता रावण माटापड़ा दाने अर्थम
नेमान గడ్డిపుల తో సమానం నువ్వు నా రాముడు గొప్పవాడు అంటుంది
సీతావతే జబ్ రావణ్ ఉసే ములాకాత్ కర్నే కే లియే జాతే హై గాస్ కే
గణ దాడే ఓట్ కాస్ రగు
ఐసే ఐసే కర్కే బాత్ కర్దే ఐసే క్యో దిఖాయ ఐసే ఐసే కర్కే
తెనికే కి ఓట్ లేకర్ కే బోల్తీ హై జీ మనే తెనికే కో సామనే రఖ కర్ కే బోల్తీ హై
హా జీ
హా వో రావణ్ కో నీ దేఖ్తీ హై वो तिनको को देखती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आत्मा जो देवी देवता सनातन धर्म की नीचे से नीचे तबके की आत्मा है माने सूर्यवंशी आत्मा है उस आत्मा को देख करके वो रावण से बात करती थी। रावण से डायरेक्ट बात नहीं करती थी। वो जो सूर्यवंश की नीचे से नीचे तबके की आत्मा होगी वो भी सीता को माता की दृष्टि से देखेगी। वो नीच कुल की नहीं होगी। जो नीच कुल की आत्माएं होती है वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली होती है। इसलिए वो माता छोटे स्वरूप को भी सामने रखती है। जैसे कहते हैं एक शेरों की डिनेस्टी हो एक घोड़ों की डिनेस्टी हो और एक गधेड़ों की डिनेस्टी हो तो गधेड़ों की डिनेस्टी का छोटा बच्चा बनना पसंद करेंगे राजा बनना पसंद करेंगे या शेरों की डिनेस्टी का राजा बनना पसंद करेंगे बच्चा बनना पसंद करेंगे। शेरों की डिनेस्टी का या तो राजा बनना पसंद करेंगे या बच्चा बनना पसंद करेंगे। छोटे से छोटा बच्चा भी बन जाए तो भी अच्छा लेकिन गधेड़ों की डिनेस्टी का कोई राजा बनना पसंद नहीं करेगा। ऐसे ही है कि सूर्यवंशियों के कुल की 9 लाख भी हो 4.5 लाख भी जो आत्मा है 9 लाख भी जो आत्मा है वो भी श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली होगी भ्रष्ट पाठ बजाने वाली नहीं होगी। मुसलमानों में तो देखो क्या क्या हुआ है। जैसे ही इस्लाम धर्म शुरू हुआ भाई बहनों में शादी करना शुरू कर दी। जैसे जानवर होते हैं ना तो जानवरों को पता ही नहीं होता कौन हमारी बहन है कौन हमारी माँ है ऐसा उनका आचरण होता है जानवरों जैसा आचरण। तो देव आत्माओं का ऐसा आचरण नहीं होता। देव आत्माओं के कुल की छोटे से छोटे तबके किया जो आत्मा होगी वो भी श्रेष्ठ पाठ बजाएगी माने सीता माता को माता के रूप में देखेगी गंदी दृष्टि से देखने वाली नहीं होगी। उसके अंदर संकल्प भी नहीं आएगा कि माता के अलावा इसके साथ हमारा कोई दूसरे जन्म में कोई दूसरा संबंध हो सकता है।
बरसात ही बरसात
बरसात स्कूल बरसात भी होनी चाहिए है
बहुत बड़ा बड़ा
है। स्थूल बरसात भी इतनी जास्ती होनी चाहिए जब एटम बम फटेंगे ना जब वो स्थूल एटम बम फटेंगे तो वातावरण जो है एकदम गर्म हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर और जब वातावरण गर्म होगा तो समुद्र का जल भाप बन करके सारा ऊपर उड़ेगा और सारी दुनिया में जोर से बरसात होगी। इतनी जोर से बरसात होगी कि ये जो दक्षिण भारत है वो सारा का सारा समंदर में डूबेगा। वो गर्मी से वो बर्फ के जो पहाड़ हैं उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल में वो सारे पहाड़ जो मीलों ऊंचे हैं सैकड़ों मील ऊंचे ऊंचे पहाड़ वो सारे टूट करके गर्मी में समंदर में आ जाएंगे। और ये अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अरब देश अफ्रीका जो महाद्वीप पहले थे ही नहीं वो सब समझ वो हद की बात है और यहाँ बेहद की बात। और बाबा ने भी बोला है, क्या बोला है, बाप विदेशियों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, क्या जो भारतवासी है वो कुंभकर्ण बीच में सो रहे उन्हें पता ही नहीं होता, और जो भाषा भी नहीं जानते वो पहचान लेते हैं और संसार में प्रत्यक्ष कर देते हैं। इतना वंडरफुल ज्ञान है, अगर सेवा के फील्ड में निकलेंगे तो बुद्धि खूब चलेगी, मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा, दिन में दो चार आत्माओं को भी सुनाते रहेंगे तो बुद्धि मनन चिंतन मंथन में खूब आगे आगे दौड़ेगी।
माता जी पूछ रहा है श्री काला हस्ति का मतलब क्या है?
श्री माने श्रेष्ठ और काल माने काल माने महाकाल और हस्ती माने उसकी ताकत, तो महाकाल की ताकत तो बहुत बड़ी ताकत है ना, वो महाकाल अपने अपने महाकाल जो काल की जो शक्ति है उसके आधार पर सारी सृष्टि को ही चेंज करके रख देता है। काल माने समय, कहते हैं ना काल की हस्ती बहुत बड़ी शक्ति है, जब काल परिवर्तन होता है तो काल के आगे कोई नहीं टिकता।
श्री काल हस्ती चरण,
हाँ जी हाँ जी, काल के सामने किसी की चलती नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि काल तो जड़ है, समय जड़ है और आत्मा चैतन्य, चैतन्य आत्माओं में भी कोई ऐसी आत्मा है जो महाकाल का पार्ट बजाती है, इसलिए उनकी यादगार में वो नाम पड़ गया है श्रीकाल हस्ती।